निक ने रोहन को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था। वहां दोनों कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे। हम कल वापस इंडिया जा रहे हैं निक, फिर शादी के लिए ही वापस आएंगे, रोहन ने सामान्य तरीके से बातचीत की शुरुआत की। चलो इसी बहाने फिर से मिलना हो जाएगा। बहाना ही तो नहीं चलेगा तुम्हारा, इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुझे मेरी शादी में जरूर आना होगा, और हाँ, फॉर्मली नहीं, बिल्कुल एक दोस्त की हैसियत से तुझे मेरी शादी के हर एक फंक्शन में अटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए तो तुम्हें मेरे होटल में आकर शादी करनी पड़ेगी, फिर मैं आ जाऊंगा। बाकी तुझे तो सब पता ही है कि दत्ता और मेरी कभी नहीं बनेगी। निक किसी भी सूरत में दत्ता के घर नहीं जाना चाहता था। मैं कहीं भी करूं, तुझे तो आना ही होगा, रोहन ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा। चल छोड़, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात, या यूं कहूं कि एक रिक्वेस्ट करनी है। निक, प्लीज प्रियल का ध्यान रखना। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, प्री ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 महीने का रहा है। प्रियल दत्ता की नजरों में कभी नहीं आनी चाहिए, निक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। डोंट वरी, अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो मैं प्रियल का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है, आई विल मैनेज। बात करते हुए रोहन को अचानक जिनी की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि वो निक को पसंद करती है। निक के दिल का हाल जानने के लिए उसने अचानक ही उससे पूछा, प्रियल तुझे पसंद है ना निक? डायरेक्टली इतना इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। प्रियल अच्छी लड़की है, लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं है, निक ने इनडायरेक्टली ना कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया। निक की ना ने रोहन को थोड़ा हताश कर दिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये जाहिर नहीं होने दिया। उससे बात करके रोहन प्रांजल के साथ वापस दत्ता मेंशन आ गया। रात को निक ने अपने घर पर एमा, एवा, आर्किटेक्ट, जिनी और रॉन को डिनर के लिए इन्वाइट किया। उसे ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी थी, इसलिए उसने सभी को एक साथ ही बुला लिया था, ताकि वो ऑपरेशन से जुड़ी हुई सारी बातों के बारे में बता सके। निक पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहा था, मगर अभी तक कोई भी नहीं आया था। उसने इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ मारकर कहा, पता नहीं ये लोग कब आएंगे, कितनी देर हो गई है, इनको टाइम पर आना ही नहीं आता। फिर वो खुद से बोला, और मेरा मूड इतना सड़ा हुआ है, प्रियल ने रात मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, इस लेकर उसने आई लव यू बोला था, तुम इस बात से नाराज हो, या सुबह वो इस बात को भूल गई है, इस बात से? यार भूल गई तो भूल गई, मुझे तो इतना फर्क पड़ रहा है, वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं तो उससे नहीं करता ना, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। इतने में डोरबेल बजी और निक खुद से बाहर आया। खुद से बाहर आने के बाद वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सभी उसे बाहर एक साथ दिखाई दिए। निक ने उनको देखते हुए कहा, कुछ जल्दी नहीं आ गए आप लोग, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और लेट होना चाहिए था, रॉन उसके करीब से निकलता हुआ बोला, अगली बार इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जिनी उसके सामने आई और उसको कहा, प्रियल को भी बुला लेते, सब साथ में डिनर कर लेते। तुम भी वापस चली जाओ अपनी प्रियल के पास, निक ने रूखे मन से बोला। जिनी ने कंधे उचकाए और बोली, इसे पता नहीं क्या हो गया है, फिर वो भी अंदर की ओर चली गई। उसके जाने के बाद बाकी सब भी अंदर चले गए और एक साथ डिनर करने लगे। एक साथ डिनर करते हुए एमा ने कहा, अब तुम सस्पेंस खत्म करोगे ना, बताओ ना तुमने लोगों को कैसे बचाया, मैं जब वहां पहुंची थी तुम ऑलरेडी लोगों को बचा चुके थे, ये कैसे हुआ? हाँ, उसीलिए तो बुलाया है, मैं अब इसी बारे में बताऊंगा। हाँ, मगर उससे पहले 2 चीजें जो तुम अपने दिमाग में रखनी है, एमा रोज झाड़ते हुए बोली, आज के बाद अगर पूरी टीम के सामने मुझे जूनियर बोलकर डांटा तो मैं तुम्हें अकेले में गोली मार दूंगी, और दूसरे, अगर तुम अकेले इस तरह से भागे तो देख लेना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। गुस्से में था यार मैं, और तुम जानती हो जैन की जान को खतरा था, उसके सामने मुझे कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, तभी इस बार ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगली बार नहीं बख्शा जाएगा तुम्हें। जिनी खाना खा रही थी, सब एक साथ थे तो उसने निक को छेड़ते हुए दोबारा से कहा, प्रियल को नहीं बुला सकते थे क्या तुम? निक ने उसे घूरा और कहा, पहले तो ये बताओ तुम आई ही क्यों हो यहाँ पर, तुम अपनी प्रियल के पास ही जाओ ना, उसके साथ डिनर कर लेना ना तुम, हद है, जब से आई हो बस एक ही रट लगा रखी है। और क्यों बुलाऊं मैं उसे, शी इज जस्ट अ स्टूडेंट, आखिर में कहते कहते उसे गुस्सा आ गया, सब उसकी तरफ देखने लगे। रॉन ने उसे देखते हुए हैरानी से पूछा, तुझे क्या हुआ, तेरा मूड तो खराब है? आर्किटेक्ट ने भी इस बारे में बात की। हाँ, मैं भी सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, सब पर चिल्लाया जा रहा है ये। जल्दी बता यार, रॉन बोला। कुछ नहीं हुआ मुझे, निक ने कहा। छोड़ो, तुम लोगों को पता है ना कल सारा दिन काम किया और फिर आज ठीक से रेस्ट भी नहीं कर सका, इस वजह से मूड चिड़चिड़ा हो गया, निक ने बहाना बनाकर बात को टाला। फिर वो बोला, अच्छा चलो मिशन के बारे में सुनो, मैंने कैसे लोगों को बचाया। हाँ चलो चलो, रॉन ने कहा और सुनने के लिए तैयार हो गया। तभी एवा खड़ी हुई और बोली, देखो मुझे तुम लोगों की इन सब बातों में से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट और उसके कामों से दूर हूँ, मैं बोर हो जाऊंगी इंस्टीट्यूट की बात सुनकर। तुम ये नहीं जानना चाहती निक ने कैसे इस काम को अंजाम दिया, जैन ने उससे पूछा। निक को मैं जानती हूँ, मुझे पता है वो अपने काम को कैसे परफेक्टली करता है। बहुत बार उसके किस्से सुन चुकी हूँ, इसलिए तुम लोग सुन लो, मैं कुछ और करती हूँ। फिर वो निक से बोली, तुमने यहाँ भी अपना एक सीक्रेट रूम बना रखा है ना, मुझे उसकी चाबी दे दो, मैं कुछ क्लिप्स देख लूंगी। हाँ श्योर, निक ने कहा और फिर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पड़ी है की होल्डर में, लेफ्ट साइड। एवा उस तरफ चल दी। जिनी भी उठी और उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली, मैं भी आ रही हूँ, वरना एक बार और ये निक मुझ पर चिल्ला देगा। निक ने उसके जाने के बाद कहा, जल्दी जाओ। उसने अपने मूड को नाम देकर लिया था, क्योंकि खराब मूड में सब उससे सवाल करने लगते थे। दोनों के जाने के बाद उसने कहा, तो सुनो, मैं जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचा और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा तो मुझे वहां छुपाए हुए बम दिखे। वो बम इस तरह से लगे हुए थे कि उससे बिल्डिंग को इतना नुकसान पहुंचे कि वो नीचे गिर जाए। ये देखते ही मैं ऊपर जाने के बजाय वहीं रुका और उन सभी बॉम्ब्स को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद ऊपर पहुंचा और लोगों को बचाकर एक तरफ कर लिया। तभी ऊपर लगे बम में धमाका हो गया और वहां से एक तरफ की बिल्डिंग गिरने लगी। ये देखते ही मैंने अपनी वाली साइड में नीचे पड़ी मिट्टी देखी। मिट्टी काफी सारी थी और वो लगभग हमारे समानांतर थी। ये देखते ही मैंने लोगों को जल्दी से जल्दी वहां जाने के लिए कहा। बिल्डिंग दूसरी तरफ से नीचे गिर रही थी तो ये जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ थी। सभी लोगों को बचाने के बाद आखिर में मैं कूदा। मेरे कूदते ही मेरे पीछे की सारी बिल्डिंग नीचे गिर गई, जबकि लोग और हम सब बच गए। आर्किटेक्ट बोला, सभी ब्लास्ट एक साथ नहीं हुए थे, यानी सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध था। छोटे ब्लास्ट पहले किए गए और बिल्डिंग को गिराने वाला ब्लास्ट सबसे एंड में।
लगता तो ऐसा ही है, निक ने कहा। उन लोगों का प्लान सब लोगों की जान एक साथ लेना नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो सारे ब्लास्ट एक साथ करते। उन्होंने सबसे पहले माइनर ब्लास्ट किए। एक दो ब्लास्ट होते ही जैन वहां था तो उसने कुछ लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया। बिल्डिंग में भी माइनर ब्लास्ट हुए थे, मगर लोग सेफ नहीं हो पाए थे। मेरे आने पर वो सब लोग खतरे में थे। फिर मैं वहां गया तो बाकी के ब्लास्ट हुए। हालात मुश्किल थे, ऐसे में लोगों ने अच्छा कोऑपरेशन किया। ये सच में अच्छी बात थी, स्पेशली प्रियंक ने, एमा बोली। प्रियंक दत्ता? वो हैरान हुई थी। हाँ, प्रियंक दत्ता, निक ने कहा। काफी इंटेलिजेंट दिखाई दी उसने। सही कह रहा था रोहन, तीनों बच्चों की परवरिश काफी अच्छी की है प्रियंका जी ने। वो सब तो ठीक है, मगर हम इस घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों को नहीं पकड़ पाए, इसका अफसोस रहेगा मुझे। मैंने कुछ आदमियों को बिल्डिंग से दूर देख लिया था, मगर लोग खतरे में थे तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया था, एमा ने पूछा। कितने लोग थे वो? ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 3-4 थे। पूरी जगह हमारे कंट्रोल में है, उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा जिसके बाद हम उन्हें पकड़ लेंगे, रॉन बोला। यार तुम ठीक हो, हमारे लिए तो यही काफी है। हाँ, मगर मेरे लिए नहीं है, ऐसे लोगों का पकड़ा जाना जरूरी है, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ, इस घटना के पीछे असल शख्स कौन जिम्मेदार है। जो भी हो, वो भी मुझसे ज्यादा दिनों तक बचेगा नहीं। निक के चेहरे पर अलग ही तरह का गुस्सा था।